हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन ने अपने पिता को इस तरह टूटते देखा तो हैरान हो गया। अगले ही पल उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द अमित को समझाकर ले आऊँगा। उसे आपके साथ कुछ दिन रहने के लिए राज़ी कर लूँगा। इतना कहकर अमरेंद्र जी को सांत्वना दी। काली शक्तियों का मालिक अमित सारी बातें कहने के बाद चला गया था। वो चाहता था कि अमन और उसके पिता थोड़ी देर भावुक बातें करें, जिससे अमन का दिल भर जाए और वो आसानी से उसके कमज़ोर दिल पर वार कर सके। लेकिन अमरेंद्र जी अमन का हाथ पकड़कर रोने लगे और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पश्चाताप कैसे करूँ। अमित मुझे अपना बाप तक मानने को तैयार नहीं है, और शायद मैं इसी लायक हूँ। मैं उसका बाप नहीं बन पाया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत दुखी हो गए थे। अपने पिता को दुखी देखकर अमन का दिल भी दुखी होने लगा था। धीरे धीरे उसका दिल कमज़ोर होने लगा। जैसे ही अमन के अंदर कमज़ोरी आती गई, काली शक्तियों का मालिक अमित हँसता गया, क्योंकि उसका प्लान अब एक दो दिन में पूरा होने वाला था। उसने सोच लिया था कि शादी से पहले वो सारे सफ़ेद जिन्नातों को ख़त्म कर देगा। अमन जल्दी ही वहाँ से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उनके पास बात करने का वक्त नहीं था। सभी मेहमान गार्डन में जमा होने लगे थे। सोनल परी ने मेहंदी का फंक्शन बहुत शानदार तरीके से आयोजित किया था। अक्षत खुराना भी इस फंक्शन में आने वाला था, क्योंकि वो सभी फंक्शन में आता था। जितने लोग हल्दी के फंक्शन में आए थे, वे सभी यहाँ भी आए थे। सोनल ने इस बार अक्षत से सीधे सीधे बात करने का फ़ैसला ले लिया था। जिस तरह से अक्षत ने तारा परी को रोका था, उससे सोनल की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। इतना ही नहीं, तारा की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती थी, और अमन गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो सकता था, सिर्फ अक्षत की उस हरकत की वजह से। तारा परी को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वो उसे अपने वश में कर सके। हालांकि आते वक्त वो उसे वश में कर चुकी थी, लेकिन अक्षत ऐसी हरकत फिर ना करे, इसके लिए सोनल को आज अक्षत से बात करनी ही थी। तारा परी और धरा बड़े गार्डन में आकर बैठ गई थीं। सभी लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। तारा परी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। धरा भी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। धरा ने तारा परी की ओर देखते हुए कहा, तारा दीदी, वाकई ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। हल्दी का फंक्शन कैसा हुआ था, मुझे वो भी देखना था। काश मैं उस वक्त होश में होती और सारी चीज़ें देख पाती। आपको पता है, इतने बड़े फंक्शन मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के बड़े घर में रहने और इतने लोगों के बीच इस तरह के फंक्शन को देखने का मौका मिलेगा। धरा की बातें सुनकर तारा हैरान हुई। फिर उसने धरा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तारा की बात सुनकर धरा पूरी तरह हैरान थी। तारा कुछ अलग ही सोच रही थी, लेकिन अभी वो इस बात को अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहती थी। धीरे धीरे करके मेहमान आ चुके थे। अमन और अमित भी आकर धरा और तारा के पास बैठ गए। अमन बार बार तारा की ओर देख रहा था। तारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक दो बार उसकी तारीफ भी की, पर तारा हल्का सा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अमन काफ़ी नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि अमन अभी ठीक और नॉर्मल था, क्योंकि काली शक्तियों के मालिक अमित का प्लान कुछ और ही था। अमित सीधे सीधे अपने दानव को अमन के शरीर में प्रवेश कराना चाहता था। उसने संगीत के दिन को चुना था। उसी दिन वो अपने दानव को अमन के जिस्म में प्रवेश कराएगा। जब सब संगीत में बिजी रहेंगे, नाचने गाने में मग्न रहेंगे, ठीक उसी वक्त वो मल्लिका के साथ अमन का शारीरिक रिश्ता कायम करवाएगा। जब दानव पूरी तरह से अमन पर हावी हो जाएगा, तब वो ना तो तारा परी को देख पाएगा और ना ही मल्लिका को। अमित उसे कमान देगा और अमन शारीरिक रिश्ता बनाने पर मजबूर हो जाएगा। अमित अपने प्लान के साथ पूरी तरह तैयार था। वो मन ही मन सोच रहा था, अमन, तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी सिर्फ 24 घंटे की है। 24 घंटे तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। उसके बाद तुम सिर्फ मेरी कठपुतली होंगे। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। ये सोचकर अमित हंस रहा था। तारा परी ने सोच लिया था कि मेहंदी के फंक्शन के बाद वो रीत परी का आह्वान करेगी। वो अब देर नहीं करना चाहती थी, और उसका शक यकीन में बदल चुका था। सफ़ेद फूल लाल हो चुका था, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ कोई बड़ा काला साया था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। करिश्मा जी ने पहले तारा और फिर धरा को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। सोनल परी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। तभी सोनल को एहसास हुआ कि वो किसी की गहरी नज़रों के घेरे में है। उसके ठीक सामने अक्षत खुराना आ रहा था। वो पार्टी में न दूल्हे को देख रहा था न दुल्हन को, वो सिर्फ सोनल परी को देख रहा था। वो उसे कुछ देर देखता रहा, क्योंकि सोनल परी होटल से गायब हो गई थी, ये बात वो नहीं भूल पाया था। भले ही पैरा ने उस वक्त उसे अपने वश में करके उसे घर पर सोने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो होटल वाली बात नहीं भूल पाया था और अभी भी उसकी जेब में अंगूठी थी जो वो सोनल परी को पहनाना चाहता था। सोनल परी ने जैसे ही अक्षत को देखा, उसने मेहंदी के फंक्शन को छोड़कर बंगले के अंदर आ गई। वो जानती थी कि अक्षत उसका पीछा करते करते बंगले में आएगा और तब सोनल उससे सीधे बात करेगी। उसका अंदाज़ा सही निकला, सभी गार्डन में बिजी थे। जैसे ही सोनल अंदर आई, अक्षत उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। जैसे ही सोनल ने मुड़कर देखा, अक्षत दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा था और दरवाज़ा बंद कर रहा था। सोनल के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, इस तरह मेरा पीछा करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? अक्षत धीरे से आगे बढ़ा और सोनल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तुम मुझे होटल में धोखा देकर क्यों चली गई? आखिरकार तुम कब निकल गई जबकि मैं बाहर खड़ा हुआ था? तब सोनल को तारा परी की बात याद आई कि अक्षत ने उसे कैसे परेशान किया था। सोनल गुस्से से अक्षत की ओर देखकर बोली, आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ना ही सगाई, तो तुम यहाँ से जाओ। इतना कहकर सोनल ने बात खत्म कर दी। फिर उसने एक बार फिर कहा, एक और बात मिस्टर अक्षत खुराना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इस बात को समझो। सोनल की बात सुनकर अक्षत की आंखें गुस्से से फैल गईं। वो सोनल के लिए ज्यादा पजेसिव हो चुका था, वो किसी भी कीमत पर सोनल को नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही सोनल जाने लगी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। सोनल अक्षत के सीने से जा लगी। वो सवालिया नजरों से अक्षत की ओर देखने लगी, लेकिन अक्षत ने कोई जवाब ना देते हुए सोनल के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सोनल अक्षत को रोकना चाहती थी, लेकिन अक्षत के किस करने पर वो भी मदहोश हो गई और अपना आपा खो बैठी। वो भी अक्षत को किस करने लगी। अक्षत को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि सोनल भी उसका साथ दे रही है, वो बहुत खुश हो गया। उसने उसके कमर पर हाथ फेरने शुरू कर दिए। सोनल की आंखें बंद हो गईं। वो उस पल को पूरी तरह महसूस करना चाहती थी। कुछ देर किस करने के बाद अक्षत ने उसके गले पर अपने होंठ फेरने शुरू कर दिए। सोनल काफी मदहोश हो चुकी थी।
पार्टी में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। करिश्मा जी ने धरा और तारा को मेहंदी लगाने के बाद सोनल परी को याद किया। सोनल को वहां न पाकर करिश्मा जी हैरान हो गई और तारा परी से पूछने लगी, बेटा सोनल कहाँ है, तूने देखी है क्या उसको? वो भी तो मेहंदी लगा देती। तभी तारा परी को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने मन में सोनल से बात करने का फैसला ले लिया। जैसे ही किस करते हुए सोनल को इस बात का एहसास हुआ कि तारा उससे बात करना चाहती है, उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि अक्षत उसके कंधों को चूम रहा था। सोनल ने जल्दी से अक्षत के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों बार बार तुम मेरी जिंदगी में आ जाते हो? क्यों बार बार तुम मेरे रास्ते में आ जाते हो? समझे तुम? इतना कहकर सोनल वहां से निकल गई। अक्षत ने गुस्से से मुक्का मारकर कमरे की दीवार पर दे मारा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मैं हर हाल में अपना बनाकर रहूंगा और हर हाल में तुम्हें पाकर रहूंगा। इतना कहते हुए अक्षत सोनल के पीछे पीछे पार्टी में जाने लगा।